मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 3 फरवरी 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने दैनिक भास्कर में एक एक्टर के आत्मकथा के रूप में उन्होंने जो बातें एक पत्रकार को बताई थी वो पढ़ी, और सच पूछिए तो उनके इस अंश ने, यानी कि उनके जीवन के इस अंश ने, जो उनके जीवन के जद्दोजहद से जुड़ी हुई थी, मुझे बेहद प्रभावित किया। और फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे यह बात अपने प्रिय श्रोताओं तक पहुंचानी चाहिए। खासकर इस बात को पहुंचाने का मेरा एक मकसद है। याद कीजिए फ्रेंड्स कि फ्राइडे के अपने लाइफ मैनेजमेंट में मैंने आपसे एक बात की थी, और वह बात यह थी कि हम जीवन को संपूर्णता में समझें। उसके तहत मैंने ये बताया था कि जो लोग संघर्ष के रास्ते पर निकलते हैं और अपने माता पिता या अपने परिवार वंश का कोई सहारा नहीं लेना चाहते, इनफैक्ट वे सोचते तो हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास जो अपने अतीत का प्रकाश पुंज है उसका फायदा उन्हें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचता रहता है। और ये कहानी हम लोगों ने रशिया के जो एक बहुत बड़े अरबपति के बेटे हैं उनके संदर्भ में जानी थी। दोस्तों, यहां मैं खासकर ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए, होता क्या है कि जो आपकी पृष्ठभूमि है, जो आपका अतीत है, वह कहीं ना कहीं प्रवेश करने में तो आपकी मदद करता है, यानी कि शुरुआत में तो वह आपकी मदद करेगा, लेकिन अगर आप बहुत सक्षम नहीं हैं तो वह आपको टिका कर नहीं रख सकता। यानी कि जो सफलता है, सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसे आप तस्तरी में रखकर किसी को दे दें, या कोई ऐसा ताज नहीं है कि उसे किसी के सर पर रख दें और वह देखते ही देखते राजा बन जाए। वहां तो आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है, वहां आपको अपनी सफलता के लिए अपनी योग्यता का प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि जिनके पास ऐसी पृष्ठभूमि नहीं होती है उन्हें प्रवेश के लिए भी उतने ही संघर्ष के क्षणों से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, आज मैं जिस एक्टर का के संघर्ष की कथा आप लोगों को पढ़कर सुनाने जा रहा हूं, इनफैक्ट वो आज के युवाओं के बड़े चहेते एक्टर हैं, नाम आप डेफिनेटली जानना चाहेंगे। उनका नाम है कार्तिक आर्यन और इनकी अभी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, लव आजकल। तो आइए, जो अंश छपा है उसे मैं ज्यों का त्यों आपके सामने रख रहा हूं, और ये अंश है, उन्होंने एक जो पत्रकार है उनको बताया था और फिर पत्रकार ने अपने ढंग से उसे अखबारों में प्रकाशित किया है। लीजिए तो अंश सुनिए और ध्यान से सुनिएगा, तभी आप इसके जो उतार चढ़ाव हैं, जो इसकी गहराई है, जो इसमें ताप है कह लीजिए, जो इसकी गर्मी है, उसे सही मायने में महसूस कर पाएंगे। मैं जब शुरुआत में मुंबई आया तो मैंने कम बजट की वजह से रहने का ठिकाना मुंबई से बाहर बेलापुर में रखा था। हर दिन गूगल और फेसबुक से नंबर और ऑडिशन ढूंढता था। बेलापुर में रहता था और नवी मुंबई में कॉलेज था, जहां से ट्रेन में मुंबई आने के लिए 2.5 घंटे लगते थे। मैं किसी भी स्टेशन के टॉयलेट में चेंज करता और रोज घंटों ऑडिशन की लाइन में खड़े रहता था, और मुझे हर दिन मिलता था सिर्फ रिजेक्शन, रिजेक्शन, रिजेक्शन। कभी कभी तो ऑडिशन होता भी नहीं था, लाइन में खड़े खड़े ही जाने के लिए बोल दिया जाता था। निराशा होती थी, अकेले में रोता भी था, लेकिन जब भी फिल्म देखता था तो मन कुछ और कहता था। इस दौरान मैंने घर पर किसी से कुछ शेयर नहीं किया, इस बात का अलग से गिल्ट था, लेकिन मेरा सपना बहुत मजबूत था। अंदर से आवाज आती थी कि होगा, एक दिन होगा। मम्मी पापा दोनों ग्वालियर में डॉक्टर थे, वे चाहते थे कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर ही बनूं। मैंने नवी मुंबई में DY पाटिल कॉलेज में BTech में एडमिशन ले लिया, लेकिन मैं पढ़ना नहीं चाहता था। घर की हालत बहुत खराब थी, मम्मी पापा मुझे कर्जा लेकर पढ़ा रहे थे। मैंने अपने पेरेंट्स को कभी नहीं बताया कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं, मुझे डर था कि वो मना कर देंगे। लेकिन जब फिल्म प्यार का पंचनामा साइन की तो मैंने स्टेशन से अम्मी को फोन पर बताया। वह रोने लगी और बोली कि पहले क्यों नहीं बताया, मुझे उम्र भर गिल्ट रहेगा कि मैंने अपने पेरेंट्स से झूठ बोला। बहरहाल इस फिल्म को साइन करने से मेरा संघर्ष खत्म नहीं हुआ। मैं एक दिन ऑटो से घर जा रहा था कि मेरे पांव पर ऑटो चढ़ गया और मुझे अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। वहां मेरे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मुझे देखने आए तो मैं हाथ जोड़कर फूट फूट कर उनके सामने रोया कि मुझे इस फिल्म से मत निकालना, प्लीज मत निकालना। मैं इतना रोया कि क्या बताऊं, लेकिन वे लोग भले लोग थे। मेरी वजह से शूटिंग का शेड्यूल 6 महीने के लिए टाल दिया। इस तरह मेरे फिल्मी कैरियर की शुरुआत हुई। सोनू की टीटू की स्वीटी के बाद दर्शकों को कार्तिक आर्यन का नाम पहली दफा पता लगा था। यह फिल्म एक टर्निंग पॉइंट की तरह थी। इसके बाद लुका छिपी ने भी बॉक्स ऑफिस पर बम्पर बिजनेस किया। इन फिल्मों से पहले मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं स्क्रिप्ट पर विचार कर सकूं कि मैं यह फिल्म करूं या न करूं, लेकिन आज मेरे पास इतना काम है कि मैं स्क्रिप्ट पर विचार करता हूं। लुका छिपी की शूटिंग मेरे शहर ग्वालियर में हुई थी। यह वही जगह है जहां मैंने एक्टर बनने का सपना देखा था। मैं अपने स्कूल में चीफ गेस्ट बनकर गया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इस पूरे सफर में मेरी माँ ने बहुत संघर्ष किया था। दोस्तों, ये छोटा सा अंश है। अब आप देखिए कि इस अंश में 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे संदेश हैं, मुझे लगता है कि जो हमें अपने जहन में बचा कर रख लेने चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। पहला तो यह है, रिजेक्शन रिजेक्शन एंड रिजेक्शन। जिंदगी आपको रिजेक्ट करेगी ही करेगी। आप जिस क्षेत्र में भी जाइए, जितना क्षेत्र बड़ा होगा रिजेक्शन उतने ही ज्यादा होंगे। और जो दूसरी बात इसमें मुझे जो बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ रही है कि वो हाथ पकड़कर फूट फूट कर कह रहा है कि मुझे फिल्म से निकालना मत, मुझे फिल्म से निकालना मत। यानी कि यहां आपको अपने ईगो को किनारे रखना होगा, किनारे रखना होगा। जिसमें भी ईगो होगा वह दूसरे से रिक्वेस्ट नहीं कर सकता कि मुझे फिल्म से निकालना मत, मुझे फिल्म से निकालना मत। यह कोई गिड़गिड़ाने की बात नहीं है, यह कोई अपनी कमजोरी का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि सच पूछिए तो अपने अंदर का वह आत्मविश्वास है कि मुझे निकालो मत, यदि मैं इसमें रह गया तो मेरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है और यह दिशा मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है। जिसके अंदर इस तरह का आत्मविश्वास होगा वही इस विनम्रता का प्रदर्शन कर सकता है। तो दोस्तों, 2 बातें, ईगो के साथ ही रिजेक्शन भी जुड़ा हुआ है। पहला यह है कि अगर आप में ईगो है तो रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देखिए कि इन दोनों के केंद्र में ईगो है, और यदि आपके अंदर ईगो है तो आप इस तरह से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये 2 बातें, रिजेक्शन को बर्दाश्त करने की ताकत और साथ ही साथ जहां मैं हूं उसके लिए बार बार रिक्वेस्ट करने की आदत, कहीं ना कहीं ये दोनों बातें हमारे संघर्ष को धार देती हैं और सपनों को साकार भी करती हैं। तो दोस्तों, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। नमस्कार।